जैसे ही अयांश ने गुस्से से कहा, बोलो, आरवी ने अपना माथा पीटा। अपनी कमर पर हाथ रखे वो अयांश के सामने खड़ी हुई। अयांश उसे हैरानी से देख रहा था। क्या मिस्टर मेहरा, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है? कैसा भुलक्कड़ पति मिला है बप्पा मुझे। खैर, मिल गया सो मिल गया, कौन सा पसंद का है? धीरे से बड़बड़ाते हुए, क्या बोल रही हो तुम? अयांश ने फिर गुस्से से बोला। वो बात यूं है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी वाइफ यानी कि मैं लेट तक सोती रहूं। पति उठ जाए पत्नी नहीं, ऐसा रास नहीं आता उनको। तो बस आज मैं उनसे पहले उठ गई। बेड पर स्नान भी नहीं करवाना पड़ा आपको मुझसे। मैं नहा भी ली, सिंदूर भी लगाया है, मंगलसूत्र भी डाला, मंगलसूत्र दिखाते हुए जैसा मेरे पति को पसंद है सब कर लिया। मैं तो बताने आई थी कि देखिए मिस्टर मेहरा, मिसेज मेहरा आपके उठाई बिना ही उठ गई। पर एक आप हैं कि अभी तक सो रहे थे, ये तो गलत बात है। मुझे जल्दी उठने का ज्ञान देते हैं, खुद को भी तो अमल करना चाहिए कि नहीं? पत्नी उठ गई, पति सोता रहे, ये भी अच्छी बात नहीं ना? और तो और, मैंने सोचा आपको मुझ पर गुस्सा करने का मौका ही न दूं आज, पर आप तो फिर भी आग बबूला हो रहे हैं। कितने गुस्सैल हैं आप, उफ, चलिए उठिए। आरवी झुककर अयांश की बाह पकड़ने को हुई कि अयांश ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हटो यहां से, जाओ मेरे कमरे से, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। ये सुनकर आरवी ने पहले तो मुंह बनाया, फिर उसे घूरते हुए आईने के सामने चली आई। क्यों जाऊं? और ये तेरा मेरा करना छोड़ दीजिए, आप मेरे मैं आपकी, और ये कमरा हमारा। वो बात अलग है कि आप मुझे यहाँ रहने नहीं देते, पर कभी कभार तो आ सकती हूँ ना? भूलिए मत, शादी के बाद पति की हर चीज पर पत्नी का हक होता है, बताया नहीं किसी ने आपको? आपकी हर चीज मेरी ही तो है, राइट? आईने से ही अयांश की ओर देखते हुए, फिर आप मुझे मना कैसे कर सकते हैं, बताइए। आरवी ने ड्रेसिंग पर रखी कंघी उठाई और अपने बाल सेट करने लगी। ये सुनकर अयांश गुस्से से तिलमिला उठा। वो बेड से उठकर आरवी के पास आया और उसे अपनी ओर घुमाया, हाथ से कंघी छीनकर उसे ड्रेसिंग पर फेंक दिया और आरवी की बाहें कसकर पकड़ते हुए बोला, ये जो तुम कर रही हो बंद करो, कल से देख रहा हूँ कुछ कह नहीं रहा तो सिर पर चढ़े जा रही हो। आई सेड जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से, दरवाजे की ओर धकेलते हुए। तभी आरवी मंद मंद मुस्कुरा दी और अयांश की ओर मुड़कर मासूमियत से बोली, मैं तो आपको उठाने आई थी, देखिए कितना दिन चढ़ गया। लेट तक सोना सच में अच्छी बात नहीं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, पढ़ा होगा ना स्कूल टाइम में? मैं तो चाहती हूँ आपके पास ये सब हो, पत्नी हूँ ना, चाहूंगी ही, खूब तरक्की करे मेरे पति। और हाँ, ये क्या है, कमरे से बाहर धकेलने में लगे हो? इतनी ही अच्छी नहीं लगती तो घर से बाहर धकेल दीजिए, कम से कम कोई ढंग का तो पटा लूं, यहाँ तो कद्र ही नहीं। ये नहीं कि बीवी ने गुड मॉर्निंग बोला है तो गुड मॉर्निंग कहने को तो कह दूं, वो बात अलग है, अच्छा हो ना हो आपके रहते दिन कहा नहीं जा सकता। और गुड तो आप जब से लाइफ में आए हैं कुछ छोड़ा ही नहीं, मीठा पसंद नहीं ना करेला जो ठहरे, करेला खाने वाले, भौहें उचकाते हुए। आरवी की ये बातें अयांश के गुस्से में घी डालने का काम कर रही थी। अयांश ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली, वो खा जाने वाली नज़र से आरवी को घूर रहा था, पर आरवी सामने हाथ बांधे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अयांश समझ गया कि सुबह सुबह आरवी उसका दिमाग खराब करने आई है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है जो ये करना चाहती है, और उसे अपना दिमाग आरवी के साथ खराब नहीं करना था, ना ही जैसे आरवी चाहती थी उसके मुताबिक उसे कुछ करना था। इसीलिए मन ही मन खुद से बोला, तुम्हारा इरादा मुझे समझ आ रहा है आरवी, तुम जो भी करने की कोशिश कर रही हो मुझे परेशान और इरिटेट करने की, वो भी कल से, पर इस बेवकूफ लड़की के साथ मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना, और जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं करूंगा बल्कि उल्टा करूंगा। खुद ही मुंह की खाओगी तो अकल आ जाएगी, और ये जो नाटक कर रही हो छोड़ दोगी, जैसा चाहती है वैसा तो होगा नहीं, तो खुद ही थक हार कर रह जाएगी। अयांश अपनी अलमारी की ओर बढ़ गया और जिम के लिए और वॉकिंग पर जाने के लिए रेडी होने लगा। आरवी वहीं खड़ी उसे देखे जा रही थी, क्योंकि अयांश जिस स्पीड से रेडी हो रहा था बाथरूम में अपना सूट लेकर गया, उन्हीं कदमों से वापस आ गया। आरवी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और वो मन ही मन बोली, इंसान है या रोबोट, दो मिनट में रेडी, क्या स्पीड है, बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दे, कभी यहाँ तो कभी और, चीजें तो ऐसे उठा रहे हैं जैसे सब पता है कहाँ रखी हैं, वरना मुझे तो ढूंढने में ही 5-10 मिनट लग जाएं, रेडी होना तो इतने कम टाइम में दूर की बात है, मानना पड़ेगा मिस्टर मेहरा को। अरे क्यों मानना पड़ेगा, बोला, बताया तो राधे भैया ने विद एडवाइस कि अयांश बाबा के कमरे में मत जाना, उन्हें पसंद नहीं, उनकी हर चीज जगह पर होती है, थोड़ी ही इधर उधर हो तो गुस्सा करते हैं, पसंद नहीं, उन्हें साफ सुथरा कमरा और अपनी चीज परफेक्ट चाहिए होती है, और वो ऐसा ही रखते हैं, कोई उनकी मर्जी के बिना कमरे में ना आता था। आए बड़े अक्कड़चंद, अपनी चीजें व्यवस्थित तरीके से रखने वाले, चाहे फिर दूसरों की जिंदगी में खुद उथल पुथल मचा दें। मैं तो नहीं मानती एडवाइस, मैं भी करूंगी दखलअंदाजी इनकी लाइफ में, टिट फॉर टैट, कमाल है ये, मेरी जिंदगी में मेरी परमिशन बिना आ गए मैं कमरे में भी ना आऊं, ये तो होने से रहा। आरवी चतुर्वेदी नाम है मेरा, नो डरना, बाकी जो होगा देख लेंगे। अगर मरना ही है तो कम से कम कुछ मन का करके तो मरे, सब कुछ इनकी मानकर मर गए तो मरने पर भी पछतावा होगा। यूं ही बेचारी मेरी आत्मा दर दर भटकती रहेगी और इनकी हरकतों की वजह से मेरे अपने भी खफा हैं। अंतिम संस्कार कौन करेगा? ऐसा ही रहा तो ना आप चैन ना मरने के बाद आएगा, थोड़े से चैन का तो इंतजाम कर ही सकती हूँ। तभी आरवी ने खुद के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। क्या बोल रही हूँ मैं भी ना, अभी तो अच्छे से जीने के लाले पड़े हैं आरवी, उसके लिए कुछ कर, मरना तो एक ना एक दिन सबको है। तुम या ये मिस्टर मेहरा कौन सा अमृतत्व का वरदान लेकर पैदा हुए हैं, तो जड़ी जब आएगी देखेंगे, फिलहाल वो देखते हैं जो जरूरी है। और वैसे भी ये कौन से शहनशाह हैं जो इनके राज्य में जैसा ये चाहे वैसे हों, कोई एका दुक्का तो बगावत वाला होना ही चाहिए, लाइक मी, थोड़ा उल्टा सुलटा तो इनके साथ भी होना बनता है, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े, अयांश की ओर देखकर सोचते हुए। तभी अयांश अपना फोन उठाते हुए बोला, जो भी दिमाग में चल रहा है निकाल दो बाहर, फालतू की खिचड़ी पकाकर कुछ भी हासिल ना होगा तुम्हें, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, समझे? जितनी होशियारी करोगी उतनी भारी पड़ेगी तुमको, टेबल पर पड़ी वॉच उठाकर पहनते हुए। अगर इसे तुम अपनी समझदारी समझ रही हो तो बेवकूफी है तुम्हारी, जितना मुझसे उलझोगी उतना खुद को मुसीबत में पाओगी तुम, अभी सिर्फ बोल रहा हूँ मान लो, वरना मैं मनवाने पर आया तो कुछ करने लायक नहीं रखूंगा। तो अपने खुराफाती दिमाग से मुझसे पंगा लेने का प्लान भी निकालो और खुद भी मेरे कमरे से निकलो, आंखों से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। ये सुनकर आरवी मन ही मन बोली, नहीं आरवी, इनकी ये धमकी तुझे तेरे मकसद से गुमराह नहीं कर सकती, मुझे डरना ही नहीं है, सामने मौत आ जाए तब भी नहीं, ये तो फिर मिस्टर मेहरा है। कल सोच लिया था, साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगी जो अपनाना पड़ा, पर अब पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो सहना पड़े मुझे। आप समझदारी समझिए या बेवकूफी, पर मुझे सिर्फ मेरा सच दिख रहा है और नहीं, मुझे सामने लाना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उस सच्चाई के लिए मैं समझदारी से काम लेना पड़ा तो लूंगी, अगर बेवकूफिया नादानियां करनी पड़ी तो भी करूंगी, सोचते हुए।
ये सुन अयांश ने ड्रॉअर से अपने हैंडफोन निकाले और गले में डालते हुए बोला, क्या सोचने लगी? यही क्या, मैं तुम्हारी बनाई चालों में नहीं फंस सकता, कुछ नई तरकीब सोच रही हो क्या मुझे फंसाने की? क्योंकि तुम्हारे इस पति पत्नी वाले ड्रामे से तो मैं नहीं पिघलने वाला, तंज भरी मुस्कान होठों पर लाते हुए। बर्फ हो तो पिघले ना, पत्थर कहाँ पिघलते हैं, पर कोई ना, अब तो हथौड़े से वार करना पड़ा तो भी इस पत्थर दिल शख्स पर करेंगे। मुझे क्या, मुझे तो मेरे मकसद से मतलब है, जैसा चाहते हैं हम उसे करने में बकपा भी अब हमें नहीं रोक रहे, फिर आपकी क्या औकात? आरवी अपना माथा खुजाते हुए खुद से धीरे से बड़बड़ाई। तभी अयांश फिर बोल पड़ा, आई थिंक अभी भी खिचड़ी पक रही है, पर तुम्हें तो खिचड़ी पसंद ही नहीं ना, राधे को बोल दो तीखा बना देगा, कल से तुम्हारी जुबान से तीखापन भी गायब है, अच्छा नहीं लग रहा होगा ना तुम्हें, और भूख भी लगी होगी, कल रात एक सेब ही तो खाया था, भूख तो पक्का लगी होगी है ना, तभी तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने आ गई। तभी आरवी ने 32 दिखा दी, मैं नॉनवेज नहीं खाती मिस्टर मेहरा, और ना मुझे भूख लगी है, पर अच्छा लगा आप अपनी वाइफ की इतनी फिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा शर्माते हुए मुस्कुराते हुए, पर लगता है आपको मेरी मिठास पसंद नहीं आ रही है, पसंद कर लीजिए ना, आप तो करेला भी खाते हैं, मेरी मिठास से आपको डायबिटीज नहीं होगी, सच में मीठे कड़वे के बीच बैलेंस बना रहेगा, पर सच में हद ही है आपकी दो, ना तीखापन अच्छा लगता ना मिठास, अब आपकी पत्नी आपको खुश रखे भी कैसे रखे, बताओ जरा, थोड़ी पर उंगली रख सोचते हुए। ये सुना यांश ने छत की ओर देखा और मुंह से फूंक मारकर आरवी को घूरते हुए बोला, ये पति पत्नी पुराण बंद करो अब, बहुत कर लिया ड्रामा, लास्ट बार बोल रहा हूँ। अयांश बोल रहा था कि आरवी ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार दी और बीच में ही बोल पड़ी, ड्रामा नहीं तो आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही आपके दिमाग पर इतना लोड रहता है मिस्टर मेहरा, ऊपर से मुझे झेलना कौन सा आसान है, समझ सकती हूँ, लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी पड़ती है, आपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, भारी भारी लग रहा होगा ना, अब क्या करें, आपके दिमाग में पुर्जा फिट नहीं हुआ, भूल गए बप्पा डालना ही, टिककर बैठे नहीं होंगे, उनको अपना काम नहीं करने दिया होगा, हमेशा जल्दबाजी में जो रहते हैं आप, ऊपर से आपका गुस्सा बनते काम भी बिगाड़ दें, सही चीजें भी गलत कर दें, सोचना जल्दी, जज करना जल्दी, एक्शन लेना बिना सोचे समझे वो भी जल्दी, खैर आप जो सोच रहे हैं वैसा मैं कुछ नहीं कर रही, यूं ही दिमाग को कष्ट मत दीजिए, थोड़ा बहुत है वो भी सटक जाएगा, फिर बिना दिमाग बिजनेस कैसे करेंगे, दिल नाम की चीज आपके पास नहीं, एनीवे मैं तो पतिदेव अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए। दरअसल आज आरवी अयांश को जानबूझकर गुस्सा दिलाने पर तुली थी, इसीलिए ऐसी हरकतें किए ही जा रही थी जिससे अयांश रिएक्ट जरूर करे। ये सुन अयांश का माथा घूम गया, वो आरवी के गले की तरफ हाथ ले जाने लगा कि आरवी पीछे की तरफ झटकी गई, क्या कर रहे हैं, चुप करो, निकलो यहां से वरना तुम्हारी जान ले लूंगा, कब से कुछ भी बोले जा रही हो, अयांश ने आरवी पर चिल्लाते हुए कहा। ये सुन आरवी लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोली, शांत शांत मिस्टर मेहरा शांत, ऐसे कैसे जान ले लेंगे,
मैं तो आपकी जान हूं ना, आपने शादी वाले दिन बोला था मुझे, और मुझे अच्छे से भी याद है। आप मुझे मारकर विधवा होना चाहते हैं, विडंबना। एक्चुअली जेंडर गलत हो गया, बीवी का कत्ल करेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? मैं बेचारी अबला नारी कोशिश कर रही हमारे शादीशुदा रिश्ते को हरा भरा रखने की। आप हैं कि मेरा खून कर हाथ लाल करना चाहते हैं? हद है, मैं तो चाहती हूँ हमारे जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चले। अब एक दूजे से जुड़ गए तो जुड़े, किस्मत से कह लो या बैड लक, अब तो साथ ही रहना है हम दोनों को। तो प्रेम भाव से रहते हैं ना प्रिय पतिदेव, काहे उबाले मार रहे हो? अब देखिए, हमारी जीवन की गाड़ी का आप इंजन बन बैठे। आप हैं कि चल नहीं रहे आगे, तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि आप चलो तो हमारी गाड़ी चले, वरना यहीं तो ठहरे नहीं रह सकते ना उम्र भर एक ही जगह टिककर। मैं तो आपके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ माई डियर डवी हस्बैंड, कहकर आरवी अयांश के पास आ खड़ी हुई। अयांश को आज आरवी की बातें बार बार झटका दे रही थी। हैरान, परेशान, गुस्सा, सारे मिले जुले भाव अयांश के चेहरे से दिखाई पड़ रहे थे। तभी अयांश कुछ कहने को हुआ कि आरवी बाहें पकड़ते हुए बोली, हम चलें आपको साथ वॉकिंग पर? क्रमशः